यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयिहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सुजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो यहाँ पे जो श्लोक है ब्रह्मांड पुराण से वो हम चर्चा करेंगे पहले, फिर हम दोहराएंगे श्लोक को और फिर कथा आगे चालू करेंगे। श्री राघवम दशरथात्मज मम प्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम। श्री राघवम, ये रघुवंश में उनका जन्म हुआ है, राघव है वे। राघवम दशरथात्मजम, वो दशरथ महाराज के बड़े प्रिय आत्मज उनके पुत्र है। अप्रमेयम, तो भले ही एक कुल में एक पिता से उनका जन्म हुआ है पर वो एक साधारण मानव नहीं है, वे अप्रमेय है। प्रमेय मतलब गणना करना, तो उनकी शक्ति उनके गुण की गणना नहीं कर सकते। वे जो असीमित परम ब्रह्म वही अप्रमेयम है। और जब वो यहाँ पे लीला कर रहे सीता पतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम, तो वे सीता देवी के स्वामी हैं और वे एक रघुवंश के एक साधारण कोई राघव नहीं है। रघुकुलान्मय रत्न दीपम, रघुकुल में वे एक बहुत ही ज्वलंत रत्न दीप के समान है। रघुवंश शिरोमणि है वे। और फिर वे आगे बताते हैं कि ये उनके कौन से कुल में जन्म लिया है, उनके रिश्तेदारों के बता, उनके जो रिश्तेदार है उनके बारे में बता रहा है। फिर अगला श्लोक जो है उनके रूप के बारे में बताता है। अजानुबाहुम अरविंद दलायताक्षम, अजानुबाहुम, जानु मतलब जो घुटने होते हैं, अजाबाहु भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके शरीर के भी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो एक लक्षण होता है कि उनके हाथ लंबे होते हैं, वो घुटनों के आगे तक जाते हैं, अजानुबाहु। और उनके जो आँखें हैं अरविंद दलायताक्षम, कमल के फूल के समान है। और फिर कहते श्री रामम निशाचर विनाशकरम नमामि, जो रामचंद्र भगवान है निशाचर रात को जो चलते हैं जो राक्षस होते हैं विनाशकरम, तो उन्होंने क्या करने का कार्य किया, उन्होंने इस सृष्टि को राक्षसों के आतंक से मुक्त कर दिया, राक्षसों का विनाश कर दिया। तो श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम,
श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम,
श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम, सीतापतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम, सीतापतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम, अजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम, अजानुबाहुमरविंद दलायताक्षम। रुद्राक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि निशाचर विनाशकरं नमामि रामं निशाचर विनाशकरं नमामि निशाचर विनाशकरं नमामि रामं निशाचर विनाशकरं नमामि निशाचर विनाशकरं नमामि श्रीराघवं दशरथात्मजम प्रमेयम्
राघवं दशरथात्मजम प्रमेयम्
सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम्
सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम्
अजानुबाहुम् अरविन्द दलायताक्षम्
अजानुबाहुम् अरविन्द दलायताक्षम्
रामं निशाचर विनाशकरं नमामि
निशाचर विनाशकरं नमामि
इसको दोहराना चाहिए
श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम्
सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम्
अजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम् रामं
निशाचर विनाशकरं नमामि
श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयम्
श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयम्
सीतापतिं
रघुकुलान्मय रत्नदीपम्
आजानुबाहुमरविन्द दलायताक्षम्
रामं निशाचर विनाशकरं नमामि वैष्णवी
श्रीराघवं दशरथात्मजम् अप्रमेयम् सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम् अजानुबाहुमरविन्द दलायताक्षम्
रामं निशाचर विनाशकरं नमामि हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की ऐसे भगवान श्री रामचंद्र वनवास में अपना समय बड़े आनंद से गुजार रहे थे, कैसे बड़े स्थिरता और चतुरता के साथ उन्होंने भरत को वापस भेज दिया और वे प्रभु श्री रामचंद्र की पादुका लेके गए। और जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जंगल में और जा रहे थे तो वे चित्रकूट से दंडक वन में आ गए और वहाँ पे जो सारभंग ऋषि थे उन्होंने उनका उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र ने उनका उद्धार किया। और फिर सारभंग ऋषि जब जा रहे थे तो उसके पहले उन्होंने कहा कि मेरे एक घनिष्ठ मित्र ऋषि है, उनका नाम है सुदीक्षण, तो वे भी आपके दर्शन के बहुत इच्छुक हैं, तो कृपया मैं जब यहाँ पर शरीर त्याग करके जाऊँगा तो आप उन्हें अपना दर्शन दीजिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने ये बड़ा दिव्य देहत्याग देखा सारभंग ऋषि का और फिर वे और भारत की जो अंतरंग भूमि में आ गए और सुदीक्षण ऋषि के आश्रम में गए। सुदीक्षण ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ऋषि उन्होंने बहुत महान ऋषि है अगस्त्य महर्षि, वह उनका आश्रम पास में ही है। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि ज़रूर हमें उनका दर्शन करना चाहिए। और प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता को अगस्त्य ऋषि की महिमा की कहानियाँ बताने लग गए। तो ये काफ़ी विस्तृत वर्णन आता है। अगस्त्य अनेक ऋषि होते हैं पर उनमें से महर्षि होते हैं, तो अगस्त्य ये महर्षि होते हैं। तो इस तरह से जब वो कहानियाँ बताए जा रहे थे तो प्रभु श्री रामचंद्र अंत में कहा कि हमें अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेकर इसी इलाके में कहीं हमारा वास अगले कई सालों के लिए करना चाहिए। तो फिर सुतीक्ष्ण ऋषि आगे गए और अगस्त्य ऋषि को उन्होंने संदेशा भेजा कि प्रभु श्री रामचंद्र आ रहे हैं। और फिर श्री रामचंद्र गए, उन्होंने अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। विशाल आश्रम था उनका, और उस विशाल आश्रम में हर जगह ऋषिगण थे, यज्ञ कर रहे थे, मंत्र बोल रहे थे। और अगस्त ऋषि समझ गए कि वास्तव में जिन परम पुरुषोत्तम भगवान की हम आराधना कर रहे हैं इस यज्ञों के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा, वही हमारे आश्रम में आ गए हैं। और फिर ऋषि रामचंद्र ने उनको प्रणाम किया। और फिर बाद में जब बातचीत हुई तो अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है इस अवतार के लिए आने के लिए जानता हूँ मैं, और मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने वे ध्यान में गए, और फिर वहाँ पे एक बहुत ही तेजोमय, आकर्षक और विशाल मनुष्य प्रकट हो गया, और उसके साथ साथ कई बाण भी प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा कि ये जो चाप है ये विष्णु चाप है, पर पूर्व के काल में भगवान विष्णु ने स्वयं इस मनुष्य से देवताओं को असुरों के युद्ध में मदद की थी और उनको विजय दिलाई थी, तो अभी आपको भी राक्षसों से युद्ध करना है तो आप ये धनुष स्वीकार कीजिए। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष और बाण स्वीकार किए। अगस्त्यानुग्रह वर्धित राम, तो ये भगवान की लीला है कि साधारणतया भगवान सब पे अनुग्रह करते हैं, पर जब भगवान नरलीला करते हैं, वेदान सूत्र में कहा गया नरलीला कैवल्यम, नरलीला करते हैं तो अगस्त्या अनुग्रह वर्धित राम, तो ऐसे भगवान ने दिखाया कि अगस्त्य मुनि के आशीर्वाद प्राप्त करके, उनका अनुग्रह प्राप्त करके उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति वर्धित हो गई है। तो वास्तव में ऋषि रामचंद्र जब पहले बार जंगल में जाते हैं तो विश्वामित्र ऋषि जो होते हैं वे उनको कई मंत्र सिखाते हैं, बल अति बल ऐसे अनेक मंत्र सिखाते हैं, और उससे उनको दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। ऋषि रामचंद्र सर्वशक्ति संपन्न है पहले से, पर वे नरलीला में अलग अलग ऋषियों से ज्ञान और शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और उससे हमें उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे हमें भी महान भक्तों से, श्री प्रभुपाद जी से, हमारे गुरुदेव से उनकी सेवा करके उनके आशीर्वाद ग्रहण करने चाहिए, और उनके आशीर्वाद से हम यश प्राप्त कर सकते हैं, हमें भी जो कार्य करने हैं उसमें। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने उनसे पूछा कि आप कृपया मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे कहाँ रह सकता हूँ। और फिर अगस्त ऋषि ने कहा कि ये जो इलाका है ये पूरा दंडकावन का इलाका है, और यहाँ पे आगे ही पंचवटी नाम की जगह है, तो आज भी नासिक में पंचवटी नाम की जगह है, और वहाँ पे गोदावरी नदी बहती है, और वहाँ पे आज भी वो कई मंदिर है, ऐसे मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण का एक विग्रह है और शूर्पणखा लेटी हुई है, और शूर्पणखा का नाक कट गया है। तो वास्तव में नासिक ये जो नाम है वो आता है नासिका से, तो जब वो गोदावरी पंचवटी जो है गोदावरी के एक तट में है, और ऐसे बताया जाता है कि जब लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया तो नाक को फेंका गया, वो नदी के दुष्पार चला गया, तो जो नदी के दूसरे बाजू चला गया तो नदी के दूसरे बाजू की ओर जो जगह है उसको नासिक कहते हैं, नासिका से नासिक आता है वो। तो प्रभु श्री रामचंद्र वहाँ पे उन्होंने जाने के लिए अगस्त्य मुनि ने उसे उनको ऐसे मार्गदर्शन दिया, तो प्रभु श्री रामचंद्र ने स्वीकार किया, अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेके वे आगे चल पड़े। और ऐसे दक्षिण भारत में असुरों का राज्य काफी था, और असुरों के राज्य में रावण और वाली थे, रावण और वाली ने अपने आप में एक संधि कर ली थी, इसीलिए वाली अपने राज्य में सुखी थे, और बाकी सब जो राजा था दक्षिण भारत का उसमें रावण राक्षसों का राज्य चल रहा था। और राक्षस वास्तव में एक प्रकार के, वो भी हमारे जैसे ही आत्मा है, पर असुर और राक्षस इन दोनों में भेद है। साधारणतया असुर ये प्रवृत्ति भी हो सकती है, ऐसे भगवान के 16वें अध्याय में आता है दैव आसुर संपद विभाग योग, तो दैवी गुण है, दैवी संपत्ति है, असुरी संपत्ति है, तो दैवी और असुरी जो है ये व्यक्ति के गुण होते हैं, पर जो राक्षस है ये केवल गुण नहीं है, ये एक प्रकार का शरीर है, ये एक प्रकार की योनि है। और राक्षसों में असुरी प्रवृत्ति हो सकती है, और कभी कभी राक्षसों में दैवी प्रवृत्ति भी हो सकती है, इसे हम देखते हैं भागवतम के दशम स्कंद में वृत्रासुर होते हैं, वे महान भक्त होते हैं, उनकी भक्ति तो इंद्रदेव से भी अधिक होती है, पर तो फिर भी उनको राक्षस क्यों कहा गया है, उनको असुर नहीं कहा जाता है, उनकी आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, उनको राक्षस कहा जाता है क्योंकि उनका एक प्रकार का शरीर होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे युगों की ग्लानी, युगों का प्रवाह बढ़ता है तो फिर सब प्रकार से क्षय होता है इस पृथ्वी पे। तो न केवल जो लोग होते हैं उनके जो ऊंचाई होती है कम होती है, उनकी शक्ति उनकी बुद्धि कम होती है, पर वास्तव में जो पृथ्वी की मात्रा है वो भी ऐसे कुछ आचार्य मानते हैं कम होती है। इसीलिए हम इस सत्र में वो चर्चा नहीं कर पाएंगे, पर जो भारत और भारत से जो रावण की लंका है उसका जो अंतर है वह काफी विशाल है। तो अगर कोई लोग कहते हैं कि जो अभी श्रीलंका है वही रावण की लंका है तो ये संभव है नहीं संभव है इसके बारे में वाद है, पर जो अभी जो अंतर है इन दोनों में बहुत कम है। ये कम क्यों है? क्योंकि पृथ्वी की मात्रा भी कम हो जाती है इस युग का प्रवाह होता है। तो इसीलिए जो रावण के लंका का वर्णन करते हैं वो बहुत विशाल है, लाखों लाखों की संख्या में वहाँ पे असुर राक्षस रहा करते थे। तो वो अभी की छोटी सी लंका में उन वो सब रह नहीं सकते हैं। तो सब कुछ तभी विशाल था और उस समय कोई लोग कहते हैं सब राक्षस वगैरह सब काल्पनिक है, पर काल्पनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उनका अनुभव नहीं है, पर वास्तव में हमारा अनुभव बहुत सीमित है। और जैसे युगों का प्रभाव बदलता है तो जो पृथ्वी की जनसंख्या है वो भी बदलती है। तो यहाँ पे असुरों को राक्षसों को शारीरिक रूप से आने की जरूरत नहीं है कलयुग में, क्योंकि वो राक्षसों ने मानवों के मन को पूरा दबोच लिया है। तो वो राक्षस यहाँ पे वास्तव में जो 14 लोक है उनमें 7 ऊपर के लोक है और पृथ्वी के नीचे 7 लोक है, अतल वितल सुतल रसातल महातल तरातल पाताल। तो ये सब लोग जो है असुर लोग यहाँ पृथ्वी के भूलोक के नीचे रहते हैं और जो देवलोक होते हैं ऊपर रहते हैं। और जो पृथ्वी है ये इन दोनों में कई बार युद्ध का क्षेत्र हो जाता है। तो कलयुग में जो है हम देवों को भी देखते नहीं है पृथ्वी पे आते हुए अधिकांश रूप से, नहीं राक्षसों को देखते हैं। ऐसे क्यों है? क्योंकि जो राक्षस है उन्होंने लोगों के मन पे नियंत्रण करके पृथ्वी पे अपना राज्य अपने आप ही उन्होंने प्रस्थापित कर दिया है, इसीलिए उनको शारीरिक रूप से यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। वास्तव में कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि नीचे के लोग होते हैं वो पृथ्वी से नीचे है किस स्तर के, पर उनमें जो ऐश्वर्य है वो पृथ्वी से भी अधिक है, जो राक्षस शक्ति है वो भी पृथ्वी के लोगों से अधिक है। तो फिर उनको नीचा क्यों कहा जाता है मानव से? क्योंकि उनकी आध्यात्मिक चेतना मानव से कम है, वहाँ पे आध्यात्मिक प्रगति की संभावना पृथ्वी या मर्त्यलोक से कम है, इसीलिए उनको जो सब योनि है उनमें देवों को ऊपर है क्योंकि वे धर्म का पालन करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव असुरस्तद विपर्यय, तो जो ऊपर के लोगों में जो देव है वो विष्णु भक्त है, जो नीचे के लोगों में जो राक्षस है और आदिगण है वो अधिकांश रूप से विष्णु भक्त नहीं है। और जो पृथ्वी है ये इन दोनों में के बीच में रणक्षेत्र बन जाती है। तो कलयुग में राक्षसों ने इसको अपने आप ही जीत लिया है युद्ध करके, कैसे? लोगों के मन पे नियंत्रण किया है, इसीलिए वे शारीरिक उसमें नहीं आते। और फिर देवलोक यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि ये कलयुग इतना दूषित है कि अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हम भी दूषित हो जाएंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी होती है जो संपर्क से बढ़ जाती है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस अगर हो गया है तो उसको अकेले रहने को बोलते हैं और उसके मुंह को भी पट्टी लगा देते हैं, कुछ बोलना है कि पट्टी से धो बोलो, क्योंकि आप जब मुंह से बोलेंगे तो मुंह से जंतु आ जाएंगे पूरे बाहर। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था तो जब एक भक्त मुझे बोले आप जैन साधु क्यों बन गए हैं अभी तो वास्तव में क्या होता है, मुंह पे पट्टी लगा के रखते हैं, तो उसको क्या इंग्लिश में क्वारंटीन कहते हैं, मतलब क्या कि जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी दूसरों तो जानी नहीं चाहिए। तो ठीक उस तरह से जो कलयुग है ये पृथ्वी पर होता है, कलयुग स्वर्गलोक में नहीं है क्योंकि वहां पे जो समय की चर्या है अलग पद्धति चलती है। तो ये कलयुग का प्रभाव देव जो सारे देवगण हैं वो चाहते हैं कि हम पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पे पृथ्वी पे नहीं आते हैं, क्योंकि वे संपर्क से कली के और कलियुग के प्रभावों के संपर्क से दूषित नहीं होना चाहते। तो वास्तव में हमें अनुभव नहीं है ऐसे सब लोगों का। इसका मतलब ये नहीं है कि ये असुर है, राक्षस है, ये सब अस्तित्व में नहीं है। वे सिर्फ इस कलयुग में खुद को प्रकट नहीं करते हैं, और उसके लिए भी कारण है। तो रामायण और महाभारत में ये एक भेद है कि रामायण महाभारत में जो दोनों पक्ष थे वो वास्तव में मानव ही थे, पांडव और कौरव दोनों मानव थे, और दोनों के पक्ष में राक्षस युद्ध करने आए थे। क्योंकि जो घटोत्कच और उनकी सेना थी, वो भीम के पुत्र थे, वो भी आ गई थी, और जो कई असुरों का जिन्होंने भीम ने जो वध किया था, बकासुर और ये बकासुर अलग है राम कृष्ण लीला से, बकासुर और आखिर, तो उन सब का जो मित्र था अलम्बुश नाम का राक्षस, वह कौरव के पक्ष से आ गया था। पर जो दोनों युद्ध थे, दोनों पक्ष थे प्रधान, वो दोनों मानव थे। पर जो रामायण है इनमें अभी जो युद्ध है, इसमें एक पक्ष में मानव है और दूसरे पक्ष में राक्षस है, और मानव के साथ वानर भी है। और वानर हमें यह समझना चाहिए कि ये बंदर है वास्तव में है, जो वानर है वो एक प्रकार से दिव्य बंदर है। और मनुसंहिता और आदि शास्त्रों में बताया गया है कैसे ये सब अलग अलग योनियां जब होती है तो मानवों के ऊपर किम पुरुष लोक है, किम पुरुष के ऊपर किन्नर है, किन्नर के ऊपर चारण है, उसके ऊपर देव है, तो देवों के एक स्तर पहले ही वानर है। तो वानर मानवों से नीचे बंदर, वो साधारण बंदर नहीं है। हम अगर रामायण के बाद में चर्चा जब हम करेंगे तो हम देखते हैं कि जो वानर है रामायण में, वे सब जैसे मानव भावनाएं अनुभव करते हैं उसी प्रकार की भावनाएं अनुभव करते हैं, और न केवल जैसे मानव के समान भावना अनुभव करते हैं पर साथ साथ वे धर्म को भी जानते हैं। और ऐसे नहीं कि हनुमान अकेले धर्म को जानते हैं और राम भक्त है, बाकी सब वानर भी जब होते हैं वो भी जानते हैं। और जब वाली जब उनको लगता है कि मेरा वध अन्याय से के अन्याय की पद्धति से किया है राम ने, तो वे धर्म को ही शास्त्रों को बोलते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र उनका उनका जो धर्म के साथ शास्त्रों का समझ है उसको कैसे गलत है वो साबित करते हैं। तो इसका मतलब ये साधारण बंदर नहीं है, ये वास्तव में ये ऊंची योनि है। तो ऊंची योनि है, पर उस ऊंची योनि में जो लोग होते हैं उनको वो उनको वानर कहते हैं, और इस ऊंची योनि में सब देवताओं ने अलग अलग देवताओं ने वहाँ पे रूप ग्रहण किए थे भगवान विष्णु की आदेश के अनुसार, ताकि वे भगवान की लीला में सहयोग कर सके। तो ये साधारण बंदर नहीं है, और क्योंकि ये जो यो जो योनि है वो साधारण बंदर नहीं है, इसीलिए हम आजकल के युग में कहीं बोलते हुए वानर को देखेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है काल्पनिक है, ये दूसरी योनि है। उस समय वो योनि भी भारत पे रह रही थी, ये पृथ्वी पे रह रही थी। तो कई बार जो जो भौतिकवादी पंडित होते हैं वो कहते हैं कि ये रामायण का जो बाल लीला है, अरण्य लीला का पहला भाग है, वहां तक सब वो अच्छी अच्छी कहानी लगती है, और उसके बाद में वो पूरे सब काल्पनिक लोगों को उसमें डाल देते हैं, और वो कहानी को भी सत्य है या काल्पनिक है ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ये काल्पनिक नहीं है, सब सत्य है, पर ये दूसरे युग में हो रहा है, इसीलिए वो अलग पद्धति से हो रहा है सब कुछ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जब जा रहे होते हैं तो ये अगस्त्य और आदि ऋषियों से मिलने के पहले उनके एक असुर से उनका संघर्ष होता है, उसके बाद में एक और असुर संघर्ष होता है, और फिर उसके बाद में अभी ये राक्षस जो होते हैं, मैं असुर और राक्षस ये शब्द एक दूसरे के लिए समान पद से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर पहले मैंने जो फर्क है ये बता दिया है। तो उसके बाद में जो रावण से संबंधित राक्षस होते वो उनसे उनकी मुलाकात होती है वो शूर्पणखा से। तो जो पहले राक्षस जिसे प्रभु श्री रामचंद्र से मिलते हैं वनवास में, इसके पहले जब विश्वामित्र के साथ गए थे वे, तभी इन्होंने किनका वध किया था, हाँ ताटका और सुबाहु, घोर ताटका दिन घाट निपातक रामा। और फिर जो मारीच था वो मारीच का उन्हें वध नहीं किया था, उन्होंने ऐसा तीर मारा था कि वो मारीच जो है दूर फेंका जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो मारीच है वो भारत से सीधा मॉरिशियस में फेंका गया था। तो वास्तव में मॉरिशियस का अगर आप जो नाम देखते हैं तो उनकी भाषा में मॉरिशियस का अर्थ है मारीच का प्रांत। तो उनको जानते नहीं मारीच का क्या मतलब है। तो फिर जो मारीच जो था वो, तो ये पिछली बार जब वन में गए थे तभी ये राक्षसों से संपर्क हुआ था, पर इस बार जब आते हैं तो पहला जो जो असुर उनसे टक्कर होती है वो है तुष्ट विराध विनाशन राम। जो विराध नाम का असुर होता है, तो प्रभु श्री रामचंद्र वनवास में जा रहे होते हैं और एक जगह अचानक बहुत ही खौफनाक जैसे आवाज आने लगता है। तो जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो आगे लक्ष्मण रहा करते हैं। लक्ष्मण अपने तलवार से जो भी सामने कोई अगर झाड़ियां हैं या कुछ भी काटे हैं उनको काट रहे होते ताकि रास्ता साफ हो सके। फिर पीछे सीता माता आ रही है और उनके पीछे प्रभु श्री रामचंद्र अपना धनुष लेके आ रहे होते। तो इस तरह जा रहे होते हैं तो अचानक उनको कोई खौफनाक आवाज आने लगता है। और फिर वो जब जाते देखते हैं तो वहां पे जो जंगल है, जंगल को पूरा तोड़ दिया है और एक विशाल असुर है जिसकी जो ऊंचाई है लगभग 5-6 मानव जितने ऊंचे होंगे उतना है वो। और वो गुर्रा रहा है और जो भी सामने आ रहा है तो पकड़ रहा है और निगल रहा है। और जब प्रभु श्री रामचंद्र देख रहे होते तो दूर से वो देख लेता है इनको और वो क्या करता है, तुरंत अपना जो हाथ होता है लंबा हाथ लेके सीता को पकड़ लेता है और सीता को खींच लेता है अपने पास। और फिर वो अपने और राक्षस के आवाज में कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुमने तपस्वियों का वस्त्र पहना है पर क्षत्रियों जैसे धनुष लेके जा रहे हो, तुम ब्राह्मणों के नाम पे कलंक हो और तुम इस तरह से अधर्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा वध हो जाना चाहिए, पर मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, चले जाओ यहां से। और ये सीता है, मैं इसके साथ, सीता जानते नहीं, नाम जानते नहीं है पर सीता सुंदर होती, मैं इसके साथ इस जंगल में क्रीड़ा करूंगा, मैं मानव रूप लेके और तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ यहां से। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो होते पहले थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये नरलीला कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं ये तो इतना विशाल असुर है, ये हम क्या करेंगे अभी। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं, लक्ष्मण और राम बात कर रहे हैं और सीता बहुत भयभीत हो जाती है ये देख के। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि पहले तो मेरे सारे राज्य चला गया, सारे जो प्रेम के लोग थे वो सब चले गए, राधा गोकुलानंद भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, ताई गौरचंद्र भगवान की, श्री प्रभुपाद की जय। और तो मैं सारे जो मैं जिन माता पिता उनसे प्रेम करता उनसे मुझे विरह हो गया, फिर मेरे पिताजी परलोक चले गए और अभी सीता भी जा रही है, ऐसे लग रहा है विपत्ति पे विपत्ति आ रही है। तो लक्ष्मण कहने लगे, हे राम, आप जैसे आर्य व्यक्ति को ऐसे विपत्तियों से शोक नहीं करना चाहिए, ये जो असुर है इसकी शक्ति वास्तव में अपने हाथों में है, तो हम इसके हाथ काट देंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र अपने धनुष लेकर और उसकी वो तीर मारने लगे, तो वो दूर था काफी, अपने हाथों से खींच लिया था उसने सीता को। तो जब वो तीर, वो सोच रहा था कोई साधारण मानव है और तीर भी आएगा तो क्या होगा मेरे शरीर को, इसलिए प्रतिकार भी नहीं किया। पर बाद में देखा ये तीर कोई साधारण नहीं है, वज्र के समान उसके शरीर पे आ गए। और फिर वो चीखने लगा और उसने सीता को नीचे डाल दिया और आके लक्ष्मण और राम को पकड़ लिया, और लक्ष्मण और राम को पकड़ के वो दौड़ने लग गया जंगल में। और फिर अभी सीता अकेली रह गई, अभी सीता रोने लग गई। और फिर सीता अभी वो सोच रही थी कि राम और लक्ष्मण पकड़े गए, तो वो सीता जो है वो राम और लक्ष्मण से याचना नहीं कर रही है, वो राक्षस से याचना कर रही है। कह रहे, हे राक्षसों में श्रेष्ठ हे राक्षसों में श्रेष्ठ, अगर तुम मेरे पति को ले जाना चाहते हो तो मुझे भी उनके साथ में ले जाओ, मैं यहाँ पे आके जंगल में क्या करोगे। और सीता रोने लग गई। और जब रामचंद्र भगवान ने देखा कि सीता रो रही है तो वह क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा अपनी तलवार निकाली, लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली और तलवार इतनी शक्ति से घुमाई कि ये वो राक्षस सोचा था कि ये तलवार छोटी सी हो गई, पर सीधा उसके दोनों हाथ कट गए। अब राम और लक्ष्मण नीचे आ गए और वो राक्षस चीखने लग गया, कौन हो तुम? फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने बताया कि अब उन्होंने अपना परिचय, तो तुम कौन हो? और फिर उसको वो नीचे गिर गया था तो उसने बताया कि मेरा नाम विराध है और मैं यहाँ पे राज्य करता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारा राज्य अभी खत्म हो गया है क्योंकि वास्तव में सारा जो पृथ्वी है वो रघुवंश के राज्य है, राज्य में है, और तुम यहाँ पे आतंक कर रहे हो, तुम्हारा वध कर देगा। तो वो उनको पीटने लग गया अपनी तलवार से, तलवार से पीट रहे थे फिर भी उसका वध नहीं हो रहा था। तो फिर लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण से कहा प्रभु रामचंद्र ने कि जो असुर है कभी उनको वर होता है तो उनका वध नहीं होता है, तो उनको जिंदा ही दफना देना चाहिए। जिंदा दफना देंगे तो न केवल उनकी मृत्यु हो जाएगी पर जो असुर शरीर है वो असुर शरीर से भी उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने वहां पे लक्ष्मण ने तुरंत एक बड़ा खड्डा बनाया, उसको दफना दिया और फिर जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा ऊपर निकली और वो एक दिव्य गति प्राप्त की। फिर उसके बाद में ये सारभंग, सुदीक्षण और अगस्त्य इनसे मिलने के पहले हुआ। फिर अगस्त्य ऋषि इसके मिलने के बाद जब वे आगे पंचवटी की ओर जा रहे थे तभी इन्होंने एक विशाल विचित्र आकृति का, कोई सफेद रंग का कोई जीव देखा, कौन सा जीव समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत उनको लगा ये असुर है तो इसलिए उन्होंने अपने धनुष लेके तीर उसकी ओर निशाना मार लिया और फिर वो आगे गए। श्रीराम जी ने कौन हो तू? और वो कौन थे? जटायु गृध्राधिप समसेवित राम। तो जटायु ने कहा कि वास्तव में मैं जटायु हूं और मैं, उन्होंने दूर से देखा तो वे प्रभु श्री रामचंद्र को पहचान लिए, तुम दशरथ महाराज के पुत्र हो और मैं तुम्हें देख के बहुत प्रसन्न हुआ हूँ यहाँ पे। और फिर जब उन्होंने देखा कि दशरथ महाराज के पुत्र है तो प्रभु श्री रामचंद्र उनको उनको प्रणाम किया, जटायु को प्रणाम किया, उनको अपने पिता के समान ही कहा। और जटायु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और मैं तुम अगर तुम और लक्ष्मण कहीं बाहर जाओगे तो मैं सीता का संरक्षण करूंगा। और फिर उन्होंने कहा मैं यहाँ पे सारी जगह को जानता हूँ। और फिर वो उनके पीछे आ रहे थे और फिर जब वो आगे जा रहे थे तो जो दंडकारण्य में उन्होंने सुंदर कुटिया बना ली और वहाँ पे वो रहने लग गए। इस तरह से जब वहाँ पे रह रहे थे तो कई साल गुजर गए, तो 14 साल का वनवास था। तो ऐसे बताया जाता है कि लगभग 1-1.5 साल जो था उन्होंने चित्रकूट में गुजारा। ये अलग 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 कल्पों में अलग अलग मात्रा में होता है, पर 10 साल जो है लगभग उन्होंने दंडक वन में गुजारे। और फिर उसके बाद में जो सारी घटनाएं हुई वो सब आखिरी 1-1.5 साल में हुई है। तो वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं है कि वो युद्ध कितने समय तक चला, पर ये वर्णन है विस्तारित रूप से कि स्पष्ट रूप से है कि सीता लगभग 1 साल तक वनवास में थी, वनवास में नहीं, रावण के अशोक वाटिका में थी। और उसके बाद में जब उनको लौट के आना था तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि अभी 14 साल खत्म ही हो रहे हैं और अगर हम पैदल जाएंगे वापस तो फिर हम लौट नहीं पाएंगे समय में। उनको अभी तक चिंता थी, भरत ने कहा था कि अगर आप 14 साल से 1 दिन ज़्यादा होगा तो आपको मैं मृत शरीर मिलेगा। तो विभीषण याचना कर रहे थे कि आप कुछ समय तो मेरे राज्य में रहो और आपने आपका मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो श्री रामचंद्र ने कहा अगर आप सेवा करना चाहते हो तो कृपया आप ऐसी योजना बनाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी अयोध्या लौट पाए। तो फिर जो रावण का पुष्पक था वो पुष्पक से उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र को वापस अयोध्या भेज दिया। और जब अयोध्या लौट के आ गए तो फिर तभी प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि पुष्पक अभी आप आपके जो स्वामी हैं कुबेर उनके पास चले जाओ, क्योंकि कुबेर का वाहन था वो और रावण ने जबरदस्त छीन लिया था। तो इस तरह से ये कालावधि है। तो जब इस तरह से कई साल तक ये दंडक वन में रह रहे थे प्रभु श्री रामचंद्र और एक दिन जैसे वो रह रहे थे तो आसमान से उन्होंने देखा कि आसमान से ये शूर्पणखा नाम की जो राक्षसी थी वो जा रही थी। जो जा रही थी तो उसको मानवों की सुगंध या दुर्गंध जो भी कहना है वो आ गए। तो उसके लिए वो सुगंध थी कि वो खाद्य पदार्थ था। देख कहाँ से आ गए मानव ये। तो वो हवा से उड़ जा रही थी तो उन्होंने देखा कि जहाँ जिस दिशा में आ रहे थे वहां पर चले गए। कि जंगल में उसमें पूरे पूरे जानवर वगैरह आदि थे। और जैसे ही उन्होंने श्री रामचंद्र को देखा तो जो राक्षस होते हैं उनके एक लक्षण होता है कि इंद्रियों पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो जिस चीज को पहले वो खाद्य पदार्थ देख रहे थे वो अभी क्या है इंद्रिय विषय समझ लिया। और क्या इसके साथ भोग करोगे। और प्रभु श्री रामचंद्र का रूप देखा उन्होंने और आकर्षित हो गई। और आकर्षित हो गई तुरंत। और फिर वह सोचा कि मैं एक मानवीय रूप धारण कर लूंगी, एक सुंदर स्त्री बन जाओगी और मैं प्रभु श्री रामचंद्र इस व्यक्ति जो है ये जो युवक है बड़ा सुंदर है मैं इसके साथ भोग करूंगी। और फिर वो तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र के आश्रम में प्रवेश कर ले, एक सुंदर युवती के रूप में आ गई वो। और वो अपने आँखों के शरीर के हिलने से डुलने से वो काम वासना में प्रभु श्री रामचंद्र को डालने का प्रयास कर रही थी। और वो कहने लग गई बड़ा ही मधुर, राक्षस का आवाज मधुर नहीं होता है साधारण, पर इस रूप में उसने बड़ा मधुर आवाज बना लिया था खुद का। और मधुकंठ में कहने लग गई कि आप कौन हो, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो और आप इतने सुंदर हो। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने बड़े ही निष्कपट भाव से उसको देखा और पूरे सब कुछ सत्य बता दिया कि वे कौन है। और कहे आप कौन हो, आप तो यहाँ पे इस भयानक जंगल में अकेले कैसे घूम रही हो, तो तुम्हारे पति कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। तो शूर्पणखा ने जब ये सुना कि राम है तो वो कहने लग गई। तो उन्होंने जब उन्हें कहा तुम्हारे, तो वो कहने लग गई कि मैं वास्तव में अभी वो अपने शरीर से पहले प्रलोभन कर रही थी, बाद में सोचा अभी प्रलोभन करना है तो मैं कितने महान हूँ बताओगी। तो उसने सोचा अपनी धारणा से कि अगर मैं बताऊं कि मैं रावण की बहन हूँ तो ये इंप्रेस हो जाएगी। तो पहले तो उसने अपना रूप जो लिया था वो एक सुंदर मानवीय स्त्री का रूप लिया था। पर वो कहने लग गई जो राक्षसों के राजा है जिसने इंद्र को भी हरा दिया है वो रावण की मैं बहन हूँ। तो राम देख रहे थे, लक्ष्मण भी दूर से, लक्ष्मण से कुछ लकड़ी काट रहे थे वो देख रहे थे। उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए ये इतनी सुंदर स्त्री राक्षसी है वास्तव में। तो और वो कहने लग गई कि मैं वहां पे सब कुछ सत्य बता रही थी वो कुछ, मैं यहाँ पे जंगल में घूम रही थी और मैं सोचे कुछ मानो खाने को मिल जाएगी मुझे। पर जब मैं तुम्हारा सुंदर रूप देखा तो मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गई हूँ और फिर मैं तुम्हें स्वर्ग के समान ऐश्वर्य दे सकती हूँ। राम इस जंगल में या तुम चाहो तो महल में हम ऐश कर सकते हैं। और जहां तक ये तुम्हारा भाई है और तुम्हारा ये सीता है ये तो इतनी कुरूप स्त्री है तो हम दोनों के भोग के लिए, हम दोनों भोग करने के पहले मैं इन दोनों को खा लूंगी और फिर हम दोनों भोग करें। तो उसके राक्षसी प्रवृत्ति से वो पूछा कर रहे थे और सोचे बहुत अच्छा प्रस्ताव रख रही हूँ। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ा थोड़ा हंसी कर लेते, थोड़ा मजा कर लेते। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी उच्च कुल की हो, राक्षस राज की बहन हो, तो तुम्हारे जैसे स्त्री के लिए अगर किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी बनना है तो वो उचित नहीं है। तुम दूसरी पत्नी बनोगे तो तुम्हें सीता की सेविका बनना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जो मेरा भाई है लक्ष्मण ये भी बड़ा शक्तिशाली है, ये भी बड़ा सुंदर है और ये अविवाहित है तो तुम उससे विवाह कर लो। तो वास्तव में शूर्पणखा का भाव देखिए कि अभी आई थी प्रभु रामचंद्र से विवाह करने और रामचंद्र ने बोला तुरंत सारा राम की ओर आकर्षण लगाया, लक्ष्मण से जाकर कहने लगे कि तुम मुझसे विवाह कर लो। और वास्तव में लक्ष्मण अविवाहित नहीं है, पर वो भी समझ गए कि प्रभु श्री राम से थोड़ा मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो राम का सेवक हूं, और अगर तुम मेरी पत्नी बनोगी तो तुम्हें न केवल मेरी सेवा करनी पड़ेगी और राम और सीता तीनों दोनों की सेवा करनी पड़ेगी, तो बेहतर है कि तुम राम से ही विवाह करो। तो तुरंत वो मुड़ के राम की ओर चले गए और राम और लक्ष्मण जो हंस रहे थे, और फिर वो सोचने लग गए ये क्या हो रहा है। और फिर उसके मन में आया ये सब हो रहा है क्यों, सीता के कारण। और राम की ओर जा रही थी तो उसका जो मन था वो पहले ही काम वासना से दूषित हो गया था और विक्रोध भी आ रहा था उसको। तो फिर सोचा कि अगर ये सीता मेरे बीच में आ रही है तो मैं तुरंत इस सीता का वध कर लूंगी, और वो सीता पे आक्रमण करने लग गई। और प्रभु श्री रामचंद्र ने जोर से चिल्लाया, और ऐसे चिल्लाया, साधारणतः मानव चिल्लाते तो राक्षस डरते नहीं, राक्षस चिल्लाते तो मानव डरते हैं, पर प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा रुको इतना तीक्ष्णता से बोला कि शूर्पणखा डर गई और वो रुक गई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि शास्त्रों में सत्य ही कहा है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ कभी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग कब अपना रूप बदल के हंसी मजाक से हिंसा में आ जाएंगे, बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हे लक्ष्मण, इसकी ट्रीटमेंट कर दो आप। तो जब वो सीता पर आक्रमण करने वाली थी तो क्रोध के कारण क्या हो गया था, उसका जो रूप था, उसने मानवीय रूप लिया था, वो तुरंत चला गया। तो असुरों के पास राक्षस शक्ति होती है कि जो रूप चाहे वो स्वीकार कर सकते हैं, पर जब वो भावनाओं के वश में आ जाते हैं तो उनका जो स्वाभाविक रूप है वो प्रकट हो जाता है। तो जैसे कहते हैं जब कठिन परिस्थिति तो असली रंग दिख जाते हैं, तो वैसे जब पूतना जब प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आई थी तो वो एक सुंदर स्त्री के रूप में आई थी, पर जब भगवान ने उनके स्तनों से दूध ले रहा था और प्राण लेने लग गई तो मुंच छोड़ो मुझे चीखने लग गई, और जब चीख रही थी तो भय और वेदना से इतनी पीड़ित हो गई वो, उन भावनाओं के कारण क्या हो गया, जो उसने रूप धारण किया था वो रूप चला गया और असली रूप दिख गया। तो शूर्पणखा भी ऐसे ही हो गया कि वो जो सुंदर मानवीय रूप में आई थी पर जब क्रोध के वश में आ गई, सीता पर आक्रमण कर रही थी, तो उसका असली रूप आ गया। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार ली, प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि ये स्त्री है, इसका वध नहीं करना चाहिए, पर इसने सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया है इसीलिए इसको जरूर सजा देनी चाहिए। भगवान तुरंत तो लक्ष्मण तुरंत अपने तलवार लिया और वह जो नाक था वो काट दिया। और अभी जब नाक काट दिया तो एक तरह से वो वेदना हो रही थी, खून बह रहा था, पर उससे अधिक नाक काटना मतलब अपमान के समान है, तो बहुत अपमानित हो गई और चीखते हुए वह दौड़ के चली गई। तो और दौड़ते दौड़ते वहां पे वो अपने जो भाई थे, ये अनेक भाई थे, हम साधारण जानते हैं रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीन भाइयों को जानते हैं, पर ये बड़ा परिवार था। तो उसमें उनके दो और भाई थे खर और दूषण, और एक बहन थी शूर्पणखा। तो वो खर दूषण, तो उनमें जो खर जो और सबसे बड़ा था खर और दूषण में, और खर एक तरह से वहां का राजा था और दूषण उसको सहयोग कर रहा था। तो खर अपने राजमहल में बैठे हुए थे बाकी सब राक्षसों के साथ, और वहां पे शूर्पणखा दौड़ के वो चली गई और गिर गई उसके सामने और कहते तुम किस प्रकार के राजा हो, तुम्हारे बहन पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो। और उठी और उसने जब देखा उसकी दशा को तो खर बहुत क्रोधित हो गया, किसने अपने मौत को आज बुलाया अपने आप पर, किसने ऐसी जरूरत की है कि तुम्हें तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की। तो उसने बताया, शूर्पणखा ने सारी कहानी बताई, और जब कहानी बताई तो खर बड़ा क्रोधित हो गया और उसने कहा अपने 14 बड़े शक्तिशाली राक्षस योद्धा थे, उनको कहा कि तुम जाके इस राम लक्ष्मण सीता तीनों का वध कर दो। और फिर शूर्पणखा ने कहा उनका वध होने के बाद मैं उन सब का खून चूस के पी लूंगी, उन्होंने मेरा खून बहाया मैं उनका खून पी लूंगी। तो बहुत क्रोधित थी ये। तो वास्तव में प्रभु श्री रामचंद्र जब वनवास में आए थे तो एक तरह से वो पहले सोच रहे थे कि मुझे राक्षस से पृथ्वी को मुक्त करना है, पर वे ये भी सोच रहे थे कि जब तक ये राक्षस मुझ पे कोई आक्रमण नहीं करते हैं तब तक मुझे उन पे आक्रमण करना ये अपने आप हमला करने के समान होगा। तो इसीलिए जब वो देखते हैं कि ऋषि मुनि पर आक्रमण कर रहे हैं वे, तो फिर वो फैसला करते हैं कि मुझे राक्षसों को सजा देनी चाहिए। पर जहां तक वो यहाँ पे आ रहे थे दंडकवन तक आए, तो उन्होंने देखा कि इस इलाके में कोई राक्षस नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जो है, जैसे हम देखते हैं महाभारत में भी, सर्व हर प्रकार से पांडवों ने और कृष्ण भगवान ने प्रयास किया कि युद्ध न हो, तो क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग की मृत्यु होती है, बहुत हिंसा होती है, सब कुछ राज्य उध्वस्त हो जाता है। तो भगवान राम ने सोचा कि ये युद्ध होगा तो हम युद्ध टाल सकते हैं, अगर राक्षस ऋषिगणों पे आक्रमण करते हैं तो फिर उनको सजा देनी चाहिए उन पे आक्रमण कर, पर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो फिर उन पे आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वे स्वयं राक्षस खोज में नहीं गए, पर वे जहाँ पे राक्षस आने वाले आते थे, ऐसी जगह पता थी दंडकवन, वहां पे आके रहने लग गए वो, ताकि अगर वो कोई ऋषिगणों को परेशान करे तो उनको वे संरक्षण कर सको। पर जब शूर्पणखा ने आके सीधा आक्रमण किया सीता पे, तो उन्होंने सोचा कि ये शूर्पणखा को सजा देनी चाहिए और इसके द्वारा राक्षसों को भी चेतावनी देनी चाहिए कि ऐसा कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए। पर जो शूर्पणखा थी, अभी वास्तव में वो अपना रूप कभी बदल सकती थी, तो जो नाक कट गया वापस भी नाक लगा सकती थी, पर वो जो नाक कटना जो अपमान था, वो अपमान को उसको बदला लेना था। प्रभु श्री रामचंद्र की इच्छा थी कि ये अपमान ही उसके लिए सजा है, जिससे कि वो वापस राक्षसों वापस इस प्रकार का कार्य न करे। तो उसने वो क्रोध की भावना से वापस लौट के आ गई, और 14 असुर आ रहे थे साथ में, और वो सब जो साथ में आ रहे थे उन्होंने दिखाया कहाँ है राम, और जब वो चीखते चिल्लाते हुए आ रहे थे तो प्रभु श्री रामचंद्र भी समझ गए कि जब शूर्पणखा ने ऐसे आक्रमण किया था फिर उसको सजा दी कि अभी ये राक्षस आने वाले हैं। तो जैसे ही आवाज़ सुना तो प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण तुम सीता को लेके गुफा में चले जाओ और तुम वहीं पर रहो। जब भी जंगल में जाते थे वो, तो हमेशा सबसे पहली चिंता राम और लक्ष्मण की थी कि सीता का देखभाल करनी चाहिए, और जहाँ भी रहते थे वो देखते थे कि वो कुटिया के बाजू में कहीं पास में गुफा है। क्या है, कुटिया पे कोई कहीं से भी कोई आक्रमण कर सकता है, तोड़ के भी अंदर आ सकता है, पर गुफा है, गुफा को साधारण एक ही अगर अंदर जाने का रास्ता है, और उसको अगर लक्ष्मण ने संरक्षण कर लिया तो फिर राक्षस सीता तक पहुंच नहीं सकेंगे। तो अभी लक्ष्मण की इच्छा थी कि मुझे भी युद्ध करना है, तो लक्ष्मण कह रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र देखा बोले कि नहीं, हाँ तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण कितना उत्साह है युद्ध करने का, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी एक हमें से एक को तो सीता की रक्षा करनी पड़ेगी, तो तुमने अभी शूर्पणखा पे आक्रमण कर लिया, अभी मेरी बारी है तो मैं युद्ध करूंगा। तो लक्ष्मण कुछ बोले नहीं और सीता को लेके गए गुफा में और वहां पे रुक गए, और ये राक्षस चीखते हुए गुर्राते हुए आ गए, और प्रभु श्री रामचंद्र अपना धनुष लेके तैयार खड़े थे। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा कि हे राक्षस तुम यहाँ पे क्यों आए हो, इस तरह से तुम यहाँ पे सब आतंक फैला रहे हो, इसके कारण तुम्हें मृत्यु का दंड देना चाहिए, अगर तुम्हें अपना जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसी धमकी दी उनको, तो वो हंसने लग गए, वो सोच रहे थे ये मानव है और मानव होके हमको धमकी दे रहा है, बोले बड़ा ऐसे कदापि एक मानव हो सकता है वो एक राक्षस युद्ध कर सकता है, कई बार अगर राक्षस आ जाते हैं तो 10, 15, 20, 100, 200 मानव आके फिर राक्षस पर युद्ध कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक मानव है और हम 14 है, तो ये क्या संभावना, हंसने लग गए उस पर, हे मूर्ख मानव तुम अपनी मृत्यु को पुकार रहे हो और तुम मृत्यु से बच नहीं सकते। और फिर वे श्री रामचंद्र पे आक्रमण करने लग गए, धनुष्य लेके आए थे, तलवार लेके आए थे, भाला लेके आए थे, श्री रामचंद्र ने सबके शस्त्रों को प्रतिकार कर दिया, और वो शस्त्र फेंक रहे थे पर सारे शस्त्र रास्ते में गिर रहे थे, हवा में ही गिर रहे थे, और प्रभु श्री रामचंद्र इतने तेजी से अपने धनुष मारे कि कुछ ही क्षणों में सारे 14 राक्षसों किसी ने से प्रभु श्री रामचंद्र के तीर भेद गए और सब ठक 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 नीचे गिर गए, सबकी मृत्यु हो गई। और जैसे हर एक राक्षस की मृत्यु होती, शूर्पणखा का मुंह और बड़ा हो रहा, क्या हो रहा है वो विस्मय, भय, क्रोध, क्या भावना हो समझ में नहीं आ रही। और वो चीखते हुए दौड़ते हुए चली गई वहां से, और चीखते हुए दौड़ते हुए चली गई और वापस घर के सामने आके गिर गई। और ए, क्यों रो रही हो तुम शूर्पणखा? मैंने 14 सेनापति मेरे भेजे थे, 14 महायोद्धा भेजे थे, उन्होंने तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दी, क्या इच्छा बाकी है? तो शूर्पणखा बोले, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई अब तक, वो सारे 14 असुरों का वध कर दिया राम ने। आश्चर्यचकित हो गया क्रोध, कैसे संभव है ये? वो 14 इतने शक्तिशाली असुर थे, एक मानव कदापि उनका वध नहीं कर सकता है। तो शूर्पणखा ने कहा कि ये जो मानव है ये कोई साधारण नहीं है, इतना शक्तिशाली, उसके जो तीर थे वो वज्र के समान आ रहे थे, और लगता है कि अगर तुम भी उसकी शक्ति से डर गए हो तो इसलिए तुम उसके सामने युद्ध करने नहीं जा रहे हो, तो तुम जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हिम्मत है तो जाओ, और अपने बहन का ही नहीं अपने जो सेवक थे उनके मृत्यु का बदला लो तुम। जब इस तरह से शूर्पणखा ने उनको उकसाया तो तुरंत खड़ा हो गया, उसने कहा कि आज ये राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। और फिर वो क्रोध से निकल पड़ा, पर वो मन ही मन सोच रहा था कि काफी शक्तिशाली हो गई है, अगर 14 योद्धाओं का वध कर दिया तो उसने अपने सारी सेना को साथ में ले लिया। साधारणतः जब कोई भी राजा होता है वो कहीं आक्रमण करने जाता है तो अपनी सारी सेना को कभी लेके नहीं जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे राज्य की भी देखभाल करनी है उसके संरक्षण के लिए कुछ सेना चाहिए। पर वो खर दिखावा कर रहा था कि बड़ा मुझे कुछ भय नहीं है, मैं इस राम का तुरंत वध कर लूंगा, पर उसने था 14 राक्षसों का एक साथ वध कर दिया, एक एक कुछ ही क्षणों में वध करे तो बड़ा शक्ति, अपनी सारी सेना को ले लिया उसने। और खर, उसके छोटा भाई था दूषण, और उनके साथ उनका जो सेनापति था बड़ा शक्तिशाली था, उसका नाम था त्रिशिर, उसके 3 सिर थे, और फिर उसके साथ उनके 14,000 जनस्थान नाम की जगह है वहां पे उनके असुर राक्षस थे, और सब आ गए और चीखते हुए चिल्लाते हुए गुर्राते हुए जब आ रहे थे तो जो जंगल में सारे जानवर थे वो सब भाग गए, सब डर के भाग गए। और जब ऐसे दूर दौड़ रहे थे बड़ा आवाज आ रहा था, तो श्री रामचंद्र समझ गए वापस आ रहा है, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण को, लक्ष्मण वापस सीता का संरक्षण करो, तुम जंगल में जाओ, बड़ी सेना आ रही है, तुम गुफा में जाओ। तो लक्ष्मण तुरंत चले गए, प्रभु श्री रामचंद्र अपनी जो कुटिया थी कुटिया के बाहर खड़े रह गए, और ये आवाज बढ़ते जा रहा था और बढ़ते जा रहा था, सब असुर राक्षसों को आने, और अचानक वो राक्षस चारों ओर से आ गए प्रभु श्री रामचंद्र पर आक्रमण करने के लिए। और चारों ओर से आक्रमण करने के लिए आ गए, प्रभु श्री रामचंद्र इतनी तेजी से तीर मार रहे थे और गोल गोल घूम के जहां से भी आ रहे थे, कब वे अपने धनुष पे तीर रख रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब अबला तीर आ रहे हैं, ये दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो जब वो सब राक्षस उनकी ओर आ रहे थे, वो राक्षसों लग रहा था कि हाँ हमारे सामने हमें रोकने के लिए और टोकने के लिए एक तीरों की दीवार, वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और जब प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसे अद्भुत दक्षता प्रतिभा दिखाई, वो जो राक्षस थे पहले श्रृंखला में जो राक्षस आए थे वो सब मृत्यु के गिर गए, दूसरी श्रृंखला में आए वो भी मृत्यु के गिर गए, तीसरी श्रृंखला में आ गए वो भी गिर गए, चौथे में से कोई आए नहीं, वो डर के दौड़ गए। और वो जब इस तरह से डर के दौड़ गए तो जब इन्होंने देखा तो खर ने कहा अपने जो कई सेनापति गए उनको बोला तुम आक्रमण करो, और वे सब आक्रमण करने आ गए। कुछ ही समय पुरुष ने उनका भी वध कर दिया। और फिर यह देख के दूषण बड़ा क्रोधित हो गए, घर क्रोधित हो गया, पर दूषण ने कहा कि मुझे आप युद्ध करने दो। और दूषण का बड़ा विशाल रथ था और रथ से वो पुरुष रामचंद्र पर आक्रमण करने आ गए। और जब वो चीखते हुए आ रहा था, चुनौती दे रहा था, तो पुरुष रामचंद्र ने बड़े आसानी से वो उस पहले उसके रथ के पहियों को तोड़ दिया, उसके सारथी को मार डाला, उसके घोड़ों को मार डाला, उसका जो मुकुट था उसको उड़ा दिया, उसके रथ के ऊपर झंडा था उड़ा दिया, वह जो तीर मार रहा था प्रभु श्री रामचंद्र उसके सब तीरों का प्रतिकार कर रहे थे, और उनके तीर इतने तेज से आ रहे थे कि उसके ओर भी आक्रमण हो रहा था। और फिर बाद में जो अपना जो रथ पूरा उद्वस्त हो गया देखा, तो उसने वो रथ से उतर गया और उतर के प्रभु श्री रामचंद्र की ओर दौड़ते हुए आ गया। जब दौड़ के हुए आ रहा था तो प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने तीरों के प्रहार किया और खर के सामने दूषण का वध कर दिया। जब खर ने देखा तो अपने भाई की मृत्यु हो गई तो क्रोधित होकर आ गया। शूर्पणखा ऊपर से सब कुछ देख रही थी और वो भय से पागल सा हो रही थी। तभी त्रिशिर ने कहा कि मुझे आदेश दो, मैं इसका वध कर दूंगा। तो खर सोच रहे थे कि मेरी सारी सेना है, मेरे सारे सेनापति सब मृत्यु हो गए, मेरा भाई भी मृत्यु हो गया। तो त्रिशिर ने अपना आक्रमण किया, बड़ा घमासान आक्रमण किया। और जो रामायण में विस्तृत वर्णन है, पर प्रभु श्री रामचंद्र ने त्रिशिर के पहले उसके सीने में तीर मारे, फिर उसके सिर तीर से उसके तीनों सिर काट दिए एक ही समय में, उसकी मृत्यु हो गई। फिर खर एक ओर से भयभीत हो गया था, दूसरी ओर से क्रोधित हो गया था। और फिर जब खर पहले ही आ रहा था युद्ध करने के लिए, तभी उसने देखे अलग अलग प्रकार से अपशकुन होते रहते। जो अपशकुन होते हैं, ये आनंद नाम जब मैंने बताया कि तीन प्रकार के अपशकुन होते हैं, जैसे आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक क्लेश होते हैं। तो वैसे तो हम जो आत्मा है वो तीन प्रकार के आवरण में है, एक शरीर में है, फिर उसके बाद में हमारे आजू बाजू के लोग हैं उनमें है, और फिर जो हमारा वातावरण है उसमें है। तो तीनों से और क्लेश आते हैं, शरीर आध्यात्मिक क्लेश शरीर से आते हैं, आधि भौतिक क्लेश जो है जो हमारे बाजू के लोगों से आते हैं, शत्रु हो आगे से हो, और जो वातावरण से आते हैं आधि दैविक क्लेश होते हैं। तो जब कुछ अमंगल होने वाला है तो इन तीनों में वो अपशकुन आते हैं। तो जब अगर ऐसे रामायण इसका विस्तृत वर्णन जो है ज्योतिष शास्त्र में आता है, तो अगर कोई पुरुष है और पुरुष का जो हाथ है, अगर बाया हाथ अगर अपने आप ऐसे हिलने लग गए तो वो अपशकुन माना जाता है। अगर आंख अपने आप ही बजने लग गया तो उसको अपशकुन माना जाता है। तो अभी कलयुग में इसका थोड़ा अलग रूप से आ गया है। अगर लोग कहते हैं कि अगर आपका हाथ अच्छी तरह से आप हिला नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है अभी आपको हार्ट अटैक आने वाला है। तो वो कहते हैं कि अगर साधारणतः इस तरह से होता है कि हार्ट अटैक कई बार अचानक आ जाता है, पर उससे कुछ लक्षण होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कलयुग में दिखने वाला शकुन है। तो ये जब घर आ रहा था तो तीनों प्रकार के अपशकुन देख रहे थे। तो वो देख रहा था कि उसका हाथ कांपने लग गया, और फिर उसने देखा कि जो जानवर थे वो जब पहले जब वो सेना आक्रमण करने लग गए तभी जानवर थे वो दौड़ गए, पर उसके पहले जैसे भागवतम के भी पहले स्कंद में वर्णन आता है कि भीम और युधिष्ठिर देखते हैं कलयुग के अपशकुन दिख रहे हैं, तो क्या हो गया, जो गीदड़ होते थे गीदड़ गुर्रा रहे थे मुंह में देखकर, और फिर जो अलग अलग जानवर है इस प्रकार से उनके ओर घूम रहे थे, ऊपर से वल्चर्स गिद्ध जो होता था ऊपर से उनके ओर गोल गोल मंडरा रहे थे। तो जब घर ने ये देखा तो समझ गया अपशकुन है, पर उसका अहंकार इतना था, वो कहता कि ये जो सारे अपशकुन हैं ये सब देवों ने मुझे डराने के लिए भेजे हैं, तो मैं कभी इनसे डरने वाला नहीं हूँ, वो देवों को हरा दिया है मैंने, तो ये अपशकुन से डरने की क्या बात है। पर ये अपशकुन जो होते हैं वह कई बार दिखाते हैं भविष्य में क्या होने वाला है, और तो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पर जब उसने देखा अभी कि मेरी सारी सेना का वध हो गया है, तो जो सारे अपशकुन उसको देखे थे और उसने दुर्लक्ष किया था वो सब स्मरण हो गया उसको, और जब इससे स्मरण हो गया तो क्रोधित हो गया वो, उससे भयभीत भी हो गया था क्योंकि वो अपशकुन याद आ रहे थे, क्रोधित हो गया था क्योंकि मेरी सारी सेना का वध हो गया है, और वो अपने रथ पे श्री रामचंद्र पे आक्रमण करने आ गए। तो वो सब सैनिकों में सब राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ था, तो कुछ समय तक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, और उसने प्रभु श्री रामचंद्र पे कई बार आक्रमण किया और प्रभु श्री रामचंद्र के सीने से खून आया लग गया, उनका सारा जो शरीर था वो तीरों के घाव से उससे जो खून निकल रहा उससे अप्लावित हो गया, उससे बहने लग गया खून, और जितना खून बह रहा था ऐसे क्षत्रिय से कहते हैं कि जितना क्षत्रिय का खून बहता है उतना उसका क्रोध करने का उत्साह बढ़ता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र और उत्साही हो गए और बड़ा भीषण युद्ध हुआ। उसके बाद में खर ने उस खर के पास अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र थे। जब रावण ने असुरों पे देवता स्वर्गलोक पे आक्रमण किया था तो उसने और अपने सब सेनापतियों ने देवलोकों से अनेक अस्त्र भी चुरा लिए थे। तो सारे अस्त्र उसने लिए, और जब वो अभी एक अस्त्र लिया तो सोचा इस अस्त्र के कारण तो राम का वध हो ही जाएगा, और बड़े आसानी से राम उस अस्त्र का प्रतिकार कर लेते, इससे कैसे बच गया, दूसरा अस्त्र दूसरे से बच गया, और धीरे धीरे अपने सारे जो अस्त्र थे वह सब खत्म हो गए। और फिर वो इतना क्रोधित हो गया कि वो अपने साधारण जो धनुष बाण थे वो मारने लग गए। तो प्रभु श्री रामचंद्र ने उसके धनुष को तोड़ दिया, उसके रथ को तोड़ दिया, और फिर वो एक बड़ी गदा लेके प्रभु श्री रामचंद्र की ओर दौड़ते हुए आ गया। श्री रामचंद्र ने उसकी गदा को तोड़ दिया, अभी कोई शस्त्र नहीं है, उसने देखा आजू बाजू में बड़ा शक्तिशाली था, एक बड़े वृक्ष को उठा लिया और वृक्ष को घुमाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र की ओर आ गया। तो जब वो आ रहा था, काफ़ी पास में आ गया प्रभु श्री रामचंद्र के, तभी उन्होंने तीर से निशाना लेके उसके सीने को छेद दिया और वो वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब इस तरह से मृत्यु हो गई तो शूर्पणखा ने देखा, बहुत दौड़ते हुए चले गए, पर इस बार दौड़ते हुए गई बिल्कुल एक भी आवाज नहीं किया, क्योंकि वो इतना भयभीत हो गई थी, वो सोचे थे कि सबका वध करे तो मेरा भी वध हो जाएगा और इस बार मेरा संरक्षण करने के लिए कोई है भी नहीं। तो वो क्रोध से पागल होके, भय से पागल होके चली गई वहां से दौड़ते हुए। और ये सारे राक्षस जब युद्ध कर रहे थे तो उनमें से एक राक्षस था, उसका नाम था अकंपन। तो अकंपन जो था उसने जब देखा किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र युद्ध कर रहे हैं, सब राक्षस का वध कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि इनसे युद्ध करने में कोई मतलब नहीं है, इनसे युद्ध करना मतलब मृत्यु को ही बुलाना है। तो फिर वो झाड़ियों में छिप गया और वहां से देख रहा था, और जब उसने देखा कि खर का भी वध हो गया, वो उसका नाम अकंपन था पर पूरा कंपन करते हुए दौड़ते हुए चला गया। और दौड़ते हुए वो जनस्थान से दौड़ते हुए निकला, वो पूरा दक्षिण भारत से सागर के तट पे आ गया, वहां से दौड़ते हुए उड़ते हुए सीधा रावण के दरबार में पहुंच गया। और वास्तव में शूर्पणखा इतनी भयभीत हो गई थी कि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो इसीलिए वो कहा क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो इसीलिए वो पहुंचने के पहले अकंपन वहां पे पहुंच गया, और अकंपन रावण के दरबार में जाके गिर गया और वो कांप रहा था। तो रावण ने कहा, तुम ए अकंपन, तुम इसने डरे क्यों, क्या बात है? तो साधारणता क्या होता है कि जो बड़े राजा होते हैं उनको कोई बुरी खबर सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो कई बार क्या होता है, कोई बुरी खबर सुना जाता है तो तुमने बुरी खबर से तुम्हें ही खत्म कर दूंगा मैं, तो ऐसा भाव होता है कई बार। तो अभी अकंपन दो तरह से कंपन कर रहा था, एक तरह से अभी तक उसके मन में राम के तीरों की स्मृति आ रही थी, दूसरी ओर से वो सोच रहा था अगर मैं रावण को बताऊंगा तो रावण मेरा क्या करेगा। तो फिर भी वो सोचा था, पर फिर भी मेरा कर्तव्य है। और तो फिर वो कहे कि हे राक्षस राज, आप मुझ पर क्रोधित मत होना, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो पर आपका जो जनस्थान में सारी सेना थी और खर दूषण और त्रिशिर सबका वध हो गया है। तो रावण अपने सिंहासन पर बैठा, तुरंत खड़ा हो गया, किसने वध किया, किसकी इतनी शक्ति है, किसकी इतनी जरूरत है? तो फिर उन्होंने कहा कि एक अकेला मानव था, उसका नाम है राम, उसने वध किया। तो रावण आश्चर्यचकित हो गया, बोला क्या वो मानव के साथ इंद्र चंद्र अग्नि कुबेर यमराज सब थे, और वो सब भी मिलके मुझे लगता है कि वो खरदूषण और उनके सारी सेना का वध कर सकते हैं, कैसे वध हो गया? तो अकंपन ने कहा कि कोई भी देवता उनके साथ नहीं था, ये राम अकेला था, अकेला है, उसने सब वध सबका वध कर दिया। और फिर जब रावण ने सुना बड़ा क्रोधित हो गया, एक बोले मैं तुरंत जाऊंगा और उस राम को मैं कुचल दूंगा, उसका वध कर दूंगा मैं। तो अकंपन ने कहा कि हे राक्षस राज, मुझे लगता है कि आपको इस राम के फंदे में पड़ना नहीं चाहिए, ये राम जब अपने तीर चलाता है तो मुझे लगता है वो अपने तीरों से स्वर्ग को भी नीचे गिरा देगा, इतनी शक्ति है, उससे युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया, वो सोच रहा था कि अकंपन डर गया है, कैसे संभव है कि मेरे सेना का वध हो जाए, मेरा अपमान हो जाए इसके द्वारा, और मैं चुप बैठा रहूं, मैं जरूर इस राम का वध करूंगा। तो कंपन ने कहा यह संभव नहीं है कि आप राम का वध कर सको युद्ध में। पर फिर भी अकंपन ने देखा, अकंपन वो एक तरह से आसुरी पद्धति से वो बुद्धिमान था, तो उसने कहा कि जो राम है बड़ा शक्तिशाली है, और शत्रु का अगर वध करना है तो शत्रु के जो जहां शक्तिशाली है उस पर आक्रमण करने से कुछ फायदा नहीं है, शत्रु की जहां कमजोरी है वहां पे उसको आक्रमण करना चाहिए। तो ये राम जंगल में आया है, पर उसकी एक सुंदर पत्नी है सीता, और ये राम जो है सीता से बहुत आसक्त है, इसीलिए जंगल में आया है पर भी वो सीता के साथ आया है। जंगल में आया है फिर भी वो अपने पत्नी को राज्य महल में नहीं रखा, पर अपने साथ लेके आया है। तो जो असुर होते हैं वो खुद के स्तर पे ही सब कुछ विचार करते हैं, तो वास्तव में वो ये नहीं सोच रहे थे कि वो ये कल्पना नहीं करते कि सीता का इतनी अपनी पतिव्रता का भाव है कि वो उतने जोर लगा मैं आपके साथ आऊंगा। तो राम को भोग करना हो इसलिए अपनी पत्नी को भी लेके आया साथ में, इससे विचार कर रहा था। तो फिर ने कहा कि अगर आप सीता का अपहरण कर लोगे तो फिर उसके विलाप में राम अपनी सारी शक्ति खो बैठेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भागवतम के कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको अपनी सारी शक्ति जो होती है वो किससे आती है, वो स्त्रियों को इम्प्रेस करने से आती है। अगर कोई स्त्री इम्प्रेस करने को नहीं है तो फिर क्या होता है, उनको सारी प्रेरणा चली जाती है। तो इसीलिए वो राक्षस, तो वास्तव में जो जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी वेचना क्या होती है कि हमको भगवान को प्रसन्न करना है, पर अकंपन क्या है, राक्षस है, तो राक्षस की चेतना सोच रहा है। तो वो क्या सोच रहा है कि अगर राम सीता से इतना आसक्त है और अगर हम सीता को उसे छीन ले गए तो राम की सारी शक्ति चली जाएगी, और उसके द्वारा फिर अगर आप उससे युद्ध करोगे तो फिर आप उसका वध कर सकते हो। तो फिर जब रावण ने सुना तो अपना सिर हिलाने लगे, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा सुझाव दिया है तुमने मुझे। तो अभी तक जो अकंपन था उसने सीता के सौंदर्य के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया था, उसने केवल सीता को एक टूल, एक उपजाऊ के रूप में इस्तेमाल करने का, जिससे कि राम को वध कर सके, उसके लिए बताया था। तो फिर रावण सोचने लग गया, उसने अकंपन को जाने के लिए कह दिया, फिर सोचने लग गया ये अगर राम ने सबका वध किया तो काफ़ी शक्तिशाली होता, सावधान रहना चाहिए मुझे। और हम जानते हैं कि जब उसने वर लिया था ब्रह्मा जी से, रावण ने बहुत घोर तपस्या की थी, उसने वास्तव में पहले ब्रह्मा जी से वर लिया था, बाद में शिव जी से भी वर लिया था। तो जब पहले ब्रह्मा जी से जो वर लिया था तो बहुत घनघोर तपस्या करने के बाद उसने कहा, जब वे आ गए उनके सामने, ब्रह्मा जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तपस्या से बहुत पसंद, क्या वर चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे वर दो आप कि मैं किसी भी देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और इन सब से किसी से भी मेरा मृत्यु ना हो सके। और फिर जब वो वर मांग रहा था तो क्या था, उसका अहंकार इतना था कि वो अहंकार के कारण उसने कहा कि मुझे ये वर की कोई जरूरत नहीं है कि मानवों या जानवरों से मेरा मृत्यु हो, क्योंकि ये मानव और जानवर हमारे औकात की नहीं है। तो उसने जानबूझ के क्या किया था, ब्रह्मा जी से कहा था कि मुझे मानवों से मुझे मृत्यु ना हो, ऐसे वर की कोई जरूरत नहीं है, मानवों को मैं खुद संभाल लूंगा। तो वास्तव में क्या होता है, जो असुर लोग होते हैं उनका अहंकार इतना होता है कि अहंकार के कारण उनका विनाश हो जाता है। तो उसने जब उसको याद आया कि मुझे जो ये राम अगर इतना शक्तिशाली है और मानवों से मुझे कोई संरक्षण का वर नहीं है, तो फिर सोचा कि मुझे राम से चौकन्ना रहना चाहिए, पर फिर भी मुझे बदला तो लेना है। तो उसने अभी योजना बनाई कि मैं, मेरा जो मित्र है, मेरा जो सेवक है मारीच, उसके पास जाऊंगा। तो सब असुर जो है वो अपने रूपों को बदल सकते हैं, पर रूप बदलना ये भी एक सिद्धि है, और ये सिद्धि अलग अलग राक्षसों में अलग अलग प्रमाण में होती है। तो जो बहुत ही आकर्षक रूप लाना है या बहुत ही अलग ही प्रकार का रूप उत्पन्न करना है, तो उसके लिए वो सब राक्षसों के क्षमता में नहीं है। सोचा कि ये मारीच के पास जाऊंगा और मारीच जादू बहुत कर सकता है, तो ये मारीच के पास जाकर मैं उससे निवेदन करूंगा, उसको आदेश दूंगा, निवेदन नहीं करूंगा, वो कभी निवेदन नहीं करते थे किसी से, आदेश देते थे, बोले कि मैं उसको उसके द्वारा सीता का अपहरण कर लूंगा। और फिर वो तुरंत अपने रथ में बैठकर मारीच की ओर चले गए। तो इसके बाद में क्या हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो कृपया हम ये एक बार मंत्र श्लोक दोहराते हैं। श्री राघवम दशरथात्मजम प्रमेयम्, सीतापतिं रघुकुलान्मय रत्नदीपम्, अजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षम्, रामं निशाचर विनाशकरं नमामि, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई सवाल है? जब दर्शन खुलता है तब एक सवाल ले सकते हैं। तो अगर भक्त के जीवन में अगर कोई देखते कुछ अपशकुन है तो क्या करना चाहिए भक्त को? तो वास्तव में कलयुग में सब अपशकुन ही है। कुछ अच्छे शकुन ज्यादा दिखते ही नहीं कलयुग में। तो वास्तव में जो श्री प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जो ज्योतिष है ये एक विद्या है और ये सही विद्या है, पर वास्तव में जो असली ज्योतिष है वो बहुत कम है कलयुग में। तो इसीलिए जो अपशकुन है वो क्या अपशकुन है, कैसे समझना है उनको, और क्या उसके बारे में किस अपशकुन का क्या अर्थ है, वो सब समझने में हमारा बहुत समय चला जाएगा। और फिर वो समझ के भी वो अपशकुन जब आएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, अंत में भगवान का ही शरण ग्रहण करने वाले, तो पहले से ही भगवान का शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमारा वो सब समय उसमें बच जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी साधारणतः ये कहा करते थे कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेना है। तो कैसे होता है कि ये ज्योतिषी शास्त्र में बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के जब अपशकुन आते हैं तो अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पर जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने बताया है तो उसमें ऐसा भी बताया है कि ये सब देवताओं के अधिष्ठाता देव जो है वे वास्तव में भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो इसीलिए वो देवताओं को भी शक्ति मिल रही है किसी अमंगल को टालने की, प्रतिकार करने की, वो भी भगवान से ही आ रही है। तो इसीलिए अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर हमें ये अपशकुनों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साधारणतया हम जानबूझ के कुछ गलत नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी जब ट्रैवलिंग किया करते थे जैसे हरिश्चंद्र को बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार कुछ लोगों के लिए जो गुरुवार को प्रवास करना उचित नहीं है, तो प्रभुपाद जी साधारणतः अगर अपनी योजना बना रहे हैं तो वो गुरुवार को प्रवास नहीं किया करते थे। पर फिर पूरे योजना बनाने के बाद अगर आखिरी समय पे अगर कोई प्रचार का मौका आ गया तो फिर भी प्रभुपाद जी गुरुवार को भी ट्रैवल किया करते थे। उसका मतलब क्या है कि जानबूझ के हम जो ज्योतिष विद्या के तत्व है उसके खिलाफ नहीं जाते हैं जानबूझ के, पर अगर भगवान की सेवा के लिए अगर उनको त्याग करना पड़े तो त्याग करने के लिए भी हम तैयार हैं। साधारणतः अगर हम खुद स्वयं मंदिर बनाएंगे तो फिर वास्तु देखेंगे और फिर सब जो शास्त्र में बताया गया है किस दिशा में विग्रह होने चाहिए वो सब के अनुसार हम बनाएंगे मंदिर। पर अगर प्रचार पहले चालू कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी जगह मिलेगी वहाँ पर हम प्रचार चालू कर देंगे। तो हमारा भाव क्या है कि भगवान की भक्ति के लिए जो भी जरूरी है वो करने के लिए हम तत्पर है, और भगवान की भक्ति करते हुए जानबूझ के हम ज्योतिष के तो के खिलाफ हम जाते नहीं हैं, पर अगर उसके ज़रूरी पड़ा तो हम वो जाने के लिए भी तैयार हैं। तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विष्णु लोग यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग? वे इसमें बड़े दक्ष है, वे सब अलग अलग देवताओं के ऊपर जो मंत्र जो अलग अलग भगवान के रूप है वो सब मंत्र वो उनके सब यज्ञों में करते हैं, और आप उनसे पूछ सकते हो अगर आपको कुछ और जानना हो तो। ओके क्विकली, शिव जी की रुचि रामचंद्र की ओर आसक्ति क्यों है? शिव जी को ही पूछना पड़ेगा ये। वास्तव में इसके अलग कारण हैं। ऐसे बताया गया कि आध्यात्म रामायण में कि शिव पद्म पुराण में भी वो श्लोक आता है कि वह प्रभु श्री राम की आराधना करते हैं सबसे अधिक, राम 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 इति वो श्लोक भी है। और साधारणतया जो उसमें वर्णन आता है कि जो राधा गोकुलानंद भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय, तो कैसे है कि प्रभु श्री रामचंद्र जब अवतार लेते हैं तभी पार्वती देवी को बहुत शंका होती है कि तो साधारण मानव लग रहे हैं, ये क्यों आप ये मेरे पति इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो तभी क्या होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र विस्तारित शिव जी जो है हर शंका का जो पार्वती की शंका का उसका निवारण करते हैं, खंडन करते हैं हर संसार सवाल का, और प्रस्थापित करते हैं उस समय किस तरह से वे प्रभु श्री रामचंद्र ऐसे मानवीय लीला भी कर रहे हैं फिर भी वो परम पुरुषोत्तम भगवान ही है, वे सर्वोच्च भगवान ही है वास्तव में। और प्रभु जो शिव जी की भक्ति है वो शास्त्र प्रभु श्री रामचंद्र के कई शास्त्रों में बताई है, और ऐसे नहीं कि शिव जी की प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति ही भक्ति है। हम देखते हैं कि वे वृंदावन में भी दिक्पाल हैं, वृंदावन में भी अलग कामेश्वर महादेव अलग महादेव हैं। तो जो शास्त्र में वर्णन आता है हमारे पास उसमें कई बार रामलीला में शिव जी का वर्णन आता है, और कृष्ण लीला में शिव जी का वर्णन इतना नहीं आता, आता है उसमें भी पर इतना नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी की भक्ति अधिक रामचंद्र पे है और कम कृष्ण भगवान पे है, पर हमारे पास जो शास्त्र है अभी कलयुग उसमें प्रचुर मात्रा में वर्णन, इसलिए उसके बारे में चर्चा अधिक हुई है। पर जो देवी देवता है उनके भी वो भी व्यक्ति है, उन हर एक व्यक्ति का भी अपना आकर्षण होता है, तो इसीलिए उसमें कुछ अनुचित नहीं है, उनके आशीर्वाद से हम भी भगवती की प्रगति कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण के प्रभुपाद की जय।